नमस्ते गुरु देवाय सर्व सिद्धि प्रदायने सर्व मंगलरूपाय सर्वानंद विधायने सर्वानंद विधायने ब्रह्मानंद ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकनित्यम् विमलमचलम् सर्वद्धि साक्षीभूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमस्ते नमस्ते कृपा पूर्ण दृष्टि नमस्ते नमस्ते महानंद धात्री नममो नममो पूर्ण रक्ष रक्ष प्रसिद्ध प्रभु पाहि माम दक्ष दक्ष भक्ति सिद्धांत शिष्याय भक्ति वेदांत नामिने प्रसन्नाय प्रसन्ताय तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः शृण्वन्ति देवै स्तवै ऋग्वेदे सङ्गक्रमोपनिषदि गायन्ति यं श्यामगा ध्यानावस्तदगते न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं विदुसुरासुरगण देवाय तस्मै नमः വേദാന്നു ധരത്തെ ജഗന്നീ ബഹത്തെ ഭൂഗോളമദ്വേവ്രത്തെ ദൈത്യം ധാരയത്തെ ബലിം ചലയത്തെ ക്ഷത്രക്ഷയം കുറുവത്തെ പൗലസ്യം ജയത്തെ ഹലങ്കലയത്തെ കാരുണ്യമാതൊന്നത്തെ മ്ലേച്ഛാനമൃച്ഛയത്തെ ദശാകൃതി കൃതേ കൃഷ്ണായ തുഭ്യം നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സപ്തമ സ്കന്ദ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശം അധ്യായ ശ്ലോക സംഖ്യ 40. യഥാ യഥാ ഭഗവതോ ഭക്ത്യാ പരമയാഭിദ നൃപാശ്ചദ്യാദയ സാത്യം. ഹരേസ്തത് ചിന്തയായഹു യഥാ യഥാ ഭഗവതോ ഭക്ത്യാ പരമയാഭിദാ നൃപാശ്ചദ്യാദയ സാമ്യം. ഹരേസ്തത് ചിന്തയായഹു മദേഴ്സ്, മാതായേ, ശബ്ദാർത്ഥ അനുവാദ താത്പര്യ ബൈ ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ ഹോ. ശുദ്ധ ഭക്ത ജോ ഭക്തി കെ ദ്വാരാ പൂർണ പുരുഷോത്തമ ഭഗവാൻ കാ നിരന്തര ചിന്തൻ കർത്തേ രഹതേ ഹൈ വേ उन्हें जैसा शरीर प्राप्त करते हैं यह सारूप्य मुक्ति कहलाती है. यद्यपि शिशुपाल दंतवक्र तथा अन्य राजा कृष्ण का अपने शत्रु के रूप में चिंतन करते थे किंतु उन्हें भी ऐसा ही फल प्राप्त हुआ. तात्पर्य इस संबंध में चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भक्त को बाह्य रूप से नियमतः भक्ति के दैनंदिन कार्य करने चाहिए किंतु अंतः रूप से उसे उस निवेश भाव का चिंतन करना चाहिए जिससे वह भगवान की सेवा के प्रति आकृष्ट हैं। भगवान का ऐसे निरंतर ध्यान करते रहने से भक्त भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। जैसा कि भगवत गीता 4:9 में कहा गया है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। अपना शरीर त्यागने के बाद भक्त को पुनः भौतिक शरीर की प्राप्ति नहीं होती, अपितु वो भगवत धाम को चला जाता है, जहां उसे भगवान के उन नित्य पार्षदों का सा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिनके कार्यकलापों का वह अनुवायी बना रहता है। किंतु यदि भक्त भगवान की निरंतर सेवा करना चाहता है तो वो भगवान के पार्षदों का यथा ग्वालों गोपियों भगवान के माता पिता उनके दासों तथा भगवान के धाम के वृक्ष भूमि पशु लता तथा जल इत्यादि का निरंतर चिंतन कर सकता है। इसके विषय में निरंतर चिंतन करते रहने से मनुष्य को दिव्य पद की प्राप्ति होती है। शिशुपाल दंतवक्र कंस पौंड्रक नरकासुर तथा शल्लो जैसे राजाओं का इस तरह उद्धार हुआ, उसकी पुष्टि में माध्वाचार्य ने की है। पौंड्रके नरके चैव साल्वे कंसे च रुक्मिणी अविष्टास्तु हरेर्भक्त्वा तद्भक्त्या हरिमापिरे। यद्यपि पौंड्रक नरकासुर साल्लो तथा कंस ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शत्रु थे, किंतु ये सारे राजा उनके विषय में निरंतर सोचा करते थे। अतएव उन्हें जैसी ही मुक्ति सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, ज्ञान भक्त को भी वही गति मिलती है। यदि भगवान के शत्रु तक उनका निरंतर चिंतन करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं तो उन शुद्ध भक्तों के विषय में क्या कहा जाए जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और प्रत्येक कार्य में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सोचते। भगवान स्वभाव से बहुत ही दयालु हैं। भगवान अतीव कृपालु है। जैसे कि भगवान की स्वभाव का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है, जिस श्लोक को सुनने के बाद शुकदेव गोस्वामी तपस्या को छोड़कर अपने पिता के पास आए और श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, फिर प्रचार और प्रसार में लगे। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघंसयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितांग ततन्यम कंगबादयालुम शरणम व्रजेमः। अहो बकी, बकी शब्द में संस्कृत में बकी में दो अनुवाद होते हैं। बकी वो है जो अंदर से कुछ हो और मुंह से कुछ हो, अंदर से कुछ और बाह्य रूप से मुंह से कुछ। इस चरित्र में भगवान पिछली श्लोकों में एक श्लोक की वर्णन ऐसे आया, जब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान कमल नयन, मेरे द्वारा इस असुर को मैंने ही वर दिया था जिसके कारण वो इतना बलशाली बना। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी दोबारा ऐसे मत करना, दोबारा ऐसे वर अनक्वालिफाइड पर्सन को नहीं देना। उस श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान कहते हैं, अहीनाम अमृतो यथा, अहि कहते हैं सर्प को, जे हे ब्रह्मा जी जैसे सर्प को यदि दुग्धपान कर लिया जाए, दूध पिलाया जाए, वो क्षतिकारक ही होता है, ऐसे ही दोबारा ये गलती नहीं करना। जो व्यक्ति वास्तव में क्वालिफाइड नहीं है अगर उसको पद दे दिया जाए वो पद का अनर्थ कर बैठता है। बंगाली में कहावत है बानर हाते सालग्राम नाड़िए नाड़िए निये प्राण। सालग्राम शिला हाईली वर्शिपेबिलिटी, पर जब कोई बानर के हाथ में वो आ जाए बानर उसकी मूल्य को समझने में असमर्थ है, वो पीट पीट के शिला को तोड़ डालता है। ऐसे ही नीति शास्त्र में इसकी वर्णन आता है सर्प का। पहली बात है जे दुग्धपानम भुजंगाणाम, यदि कोई व्यक्ति दूध सर्प को पिलाए उसकी परिणाम क्या होता है, ना दुग्धपानम भुजंगाणाम केवलम बलवर्धनम, केवलम विषवर्धनम, वो सर्प के अंदर जहर ही बढ़ता है और वो बलशाली होता है दूध पी करके। ऐसे ही उपदेश ही मूर्खाणाम केवलम क्रोधवर्धनम, यदि कोई व्यक्ति मूर्ख हो वो कृष्ण कॉन्शियस फिलोसफी को समझने में असमर्थ है तो उसको समझाने से केवल उसकी क्रोध वर्धन होता है, गालियां देता है भक्त को, क्योंकि वो समझने में असमर्थ है, नहीं समझ पाता। भुजंगानाम दुग्धपानम भुजंगानाम, उसी प्रकार ब्रह्मा जी आप सर्प को दूध पिलाने वाली बातें मत कीजिए, भगवान कहते हैं। और उस चरित्र में नीति शास्त्र में भी एक श्लोक है बहुत ही अच्छा, बोलते हैं जो सर्प क्रूर खलह क्रूर सर्पात क्रूर तर खलह मंत्र औषधि बस सर्प खल के न निवार्यते। सांप भी बुरा है, क्रूर व्यक्ति है, सांप भी बुरा है, ब्रह्मा जी को कहते हैं, भगवान कहते हैं वो क्रूर और जलस ने इसके कारण वो सर्वनाश करता है। जब आप उसको कोई पावर आप दे देते हो, वर दे देते हो, तो उस बड़े बड़े असुरों ने देवताओं को सताया, तो उस संदर्भ में ये बात आता है जो सांप भी बुरा है, जहर भरा हुआ है, सर्प क्रूर वो क्रूर है, खलह क्रूर, और जो खल व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति निंदक व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति वो भी क्रूर है। पर यहां पर कंपैरिजन किया हमारे ऋषि मुनियों ने जो सांप और क्रूर व्यक्ति मंद व्यक्ति में अच्छा कौन है, ना सर्प क्रूर खलह क्रूर सर्पात क्रूरतर खल मंत्र औषधि वसह सर्प खल के न निवार्यते। सांप अगर काटने के लिए दौड़ा आए तो उसको गद दिखा दो, मंत्र पद्मतोला मंत्र पढ़ दो, सांप का फना झुक जाता है। पर जो क्रूर व्यक्ति है दुर्जन व्यक्ति है, हाँ सर्प क्रूर खल क्रूर सर्पात क्रूरतर खल मंत्र औषधि वस सर्प खल के न निवार्यते। खल के लिए कोई मंत्र नहीं है, इसलिए तक्षकस्य विषेदन तक्षकस्य विषम दंते वृश्चिकस्य पृच्छे विषम मक्षिकायां विषम मुखे दुर्जन स्याद सर्वांगे विषम। जो तक्षक है सर्प उसकी दो दांत में ही जहर भरा होता है, दांत छूते ही जहर को छोड़ देता है। तक्षकस्य विषम दंते वृश्चिकस्य पुच्छे विषम विषम, जो बिच्छू है स्कॉर्पियो उसकी जो जहर है वो पूंछ के पूंछ में होता है, पूंछ मारते ही जहर फैल जाता है। मक्षिकायाम विषम मुखे, श्री श्रेताय गौर सुंदर भगवान की जय। राधा रास बिहारी भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। मक्षिकायाम विसंग मुखे, मक्षियों का, मक्षी जहां गंदगी में बैठते हैं वो मुंह पर उन सब जीवाणु लेके आते हैं और दोनों हाथ से घिस घिस के वो सब जीवाणु छोड़ देते हैं, हम रोगाग्रस्त होते हैं। हाँ, मक्षी और जो बिरड़ी उसकी मुंह में भरा हुआ है जहर, मारते ही शरीर फूक जाता है, फूल जाता है, पेन होता है। पर दुर्जन अश्याद, जो दुर्जन व्यक्ति है, भगवान के भक्त नहीं है, एनवीएसनेस में पड़ा हुआ है, अभिमान में झुका हुआ, अभिमान में कभी झुकता नहीं है, घमंड भरा हुआ है, वो व्यक्ति के लिए शास्त्रों ने क्या कहा? ना सर्प का तो दांत में विष है, वृश्चिक की जो है उसकी पूंछ में विष है, और मक्षी का मुंह में विष है, किंतु दुर्जन का सर्वांगे विषम, सर्व अंग अंग में जहर भरा हुआ है। इसलिए दुर्जनस्य संसर्गात साधूनाम दंडमिष्यन्ति, साधु संत भगवान के भक्त दुर्जनों का संग नहीं करते, उत्तम का संग होना चाहिए, दुर्जनों का नहीं। जैसे कि आग बड़ा पवित्र है पर लोहा के साथ देने के कारण कमारशिला में देखो, जो कमार लोग हथौड़ी में पिटाई करते हैं लोहा को और आग छिटक जाता है इधर उधर, बोलते लोहो संसर्गात वन्नी, लोहा के साथ देने के कारण आग को भी मार पड़ती है। उसी प्रकार जब साधु कभी दुर्जन की संग करे, दुर्जन की संग से साधु को भी बड़ा पीड़ा पहुंचता है। इसलिए अभिमान नहीं होना चाहिए, असुरों में बहुत घमंड है, जैसे हिरण्यकशिपु आदि असुरों का। फिर इस श्लोक की व्याख्या थोड़ा करता हूं, तो घमंड की बात थोड़ा करते हैं। एक बार की कथा ऐसे हुआ, भगवान सूर्य देव और सभी देवता और देवियां जब श्रीमन जगन्नाथ महाप्रभु की स्नान यात्रा होता है, जगन्नाथ महाप्रभु के स्नान यात्रा का अर्थ है जगन्नाथ महाप्रभु के जन्मदिन है, और उस जन्मदिन में सब देवता और देवियां ठाकुर जी के स्वागत के लिए आते हैं, और उस स्नान पूर्णिमा में सभी देवता आ रहे थे और उनमें भगवान सूर्य आगे चल रहे थे और पीछे कामदेव और कामदेव जी की पत्नी रति देवी बड़े आनंद से हंसते खेलते जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। परंतु कौतूहल में हंसते हंसते उन्हें ये पता नहीं चला जे आगे सूर्य भगवान है, तो एक हाथ सूर्य भगवान को लग गया और हंसते हुए सूर्य भगवान को पीछे छोड़ते हुए कामदेव आगे निकल गए। तो सूर्य भगवान को बड़ा क्रोध आया, बोले ये यंग लड़का अपनी पत्नी के साथ इतना उन्मत्त है, इसे गुरुजन लघुजन कुछ पता नहीं है? तो उन्होंने कहा, ए कामदेव, क्रोध में, एक बार तुझे भगवान शिव शंभो रेश पशुपति शिव सुलिन महेश्वर ईश्वर सर्व ईशान शंकर चंद्रशेखर भूतेश खंड परशु गिरीशो गिरीशो मृढ़ मृत्युंजय कृतिवास पिनाकी प्रमथाधिप उग्र कपर्दी श्रीकंठ श्रुतिकंठ कपालभृत वामदेव महादेव विरूपाक्ष त्रिलोचन कुशानु रेत सर्वज्ञ झुरझटी नीललोहित हर श्म हरो भर्ग्य त्र्यंबक त्रिपुरांतक गंगाधर अंधकरिपु क्रतुध्वंसी वृषध्वज भव भीम स्ताणु रुद्र उमापति महान वैष्णव वैष्णवानंग जथा शंभु। परम वैष्णवों में परम भक्त है भगवान शिव। हे कामदेव, वो शिव ने तुझे जला दिया था, इस अहंकार से तुमने उनकी तपस्या भंग करने गया था ना, पर आज मैं तुझे जला देना चाहता हूं। और रतिदेव के साथ थे कामदेव, कामदेव को ये बात बर्दाश्त नहीं हुआ, पत्नी के सामने इतना बड़ा इंसल्ट कौन बर्दाश्त करे। और कामदेव ने बोला, वृद्ध व्यक्ति तो जानता नहीं मैं कौन हूं, अंतरिक्ष में चले गए और छुप करके पांच काम सर को छोड़ दिए, किसके ऊपर? ना वृद्ध, सूर्य भगवान के ऊपर। जब काम के पांच बाण सूर्य भगवान को लगे, सूर्य भगवान कामात काम में आतुर हो उठे, क्षुदा तुराणं नहीं शुद्ध बुद्धि तृषा तुराणं नहीं पात्र शुद्धि निद्रा तुराणं न च भूमि सज्जा कामातुराणं नहीं लोकलज्जा। काम में आतुर होने वाला व्यक्ति को लोकलज्जा की परवाह नहीं होता, और आज की स्थिति सूर्य भगवान का ऐसे ही बन गई। जब जगन्नाथ जी के दर्शन करके आ रहे थे, सूर्य भगवान अस्ताचल में जाएंगे, और सूर्य भगवान को देखने लगा अभिमन्यु ऋषि की कन्या चंद्रभागा। चंद्रभागा समुद्र के किनारे में खेल रही थी गेम, और सूर्य भगवान की आंखें उसके ऊपर पड़ गया। हाँ, और जब आंखें, ये मानव शरीर का दो खिड़की है, और यदि आंखें शुद्ध ना हो, ये बड़े बड़े कमाल कराते हैं व्यक्ति को। तो मनुष्य प्रभावित हो जाता है, कोई चीज को देखता है उसे सुंदर लगता है, आंखों तुरंत वो ब्रेन को इफेक्ट करता है, मन को प्रभावित करता है। तो फिर प्रभावित हो करके घर आता है, और फिर क्या बोलता है, उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, एक चाहिए, उसके पीछे फिर भागता है। फिर वही बात सुखदेव गोस्वामी जैसे मुर्ग तृष्णा की बात है, इच्छा को पूरा करते करते आशायां बध्यते लोकान कर्मणां अनुबध्यते आयुक्षयम् न जानामि तस्मात् जागृही जागृही। ये इच्छा रूपी नदी का कभी समाप्ति नहीं है, बहती रहती है, और इसको पूरा करते करते कब जे बुढ़ापा आ गया, मृत्यु की कवल में हम जा रहे हैं, वो पता नहीं चलता। आशायम बद्धते लोकान कर्मणां अनुबद्धते आयुक्षयम् न जानामि। तो काम में वशीभूत हो करके सूर्य भगवान अभिमन्यु ऋषि की कन्या चंद्रभागा को देखते रहे, कितना सुंदर है, और उसके पीछे भागे। जब जब चंद्रभागा ने देखा एक वृद्ध पितामह जैसे व्यक्ति मेरे पीछे दौड़ते हैं, तो वो अपने को बचाने के लिए दौड़ने लगी, और सूर्य भगवान उसके पीछे 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 दौड़े, चंद्रभागा समुद्र में कूद पड़ी और प्राण विसर्जन कर दी। सूर्य भगवान देखते रह गए, अभिमन्यु ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कन्या की मृत्यु हो गई, किसके कारण? ना सूर्य भगवान के कारण, और अभिमन्यु ऋषि ने श्राप दे दिया सूर्य भगवान को। और यही कारण, ये पौराणिक उपाख्यान है, जो सूर्य मंदिर कोणार्क का अधपतन हुआ व भग्न हुआ, और ऐतिहासिक कारण कुछ और है, पर यह पौराणिक कारण है। कहने की अर्थ यह है, वृद्ध होने के कारण क्षमा कर देते, जो उन्मत्त है कि उतावलापन में यंग लड़का चला गया, कुछ समझाते, किंतु क्रोध में आ गए, और उस क्रोध ने कहां से कहां पहुंचा दिया सूर्य भगवान को। इसलिए भक्त, क्रोध और अभिमान नहीं करना। अभिमान से क्या होता है, ना भक्ति से हम दूर चले जाते हैं। विशाल कुल संभवा रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभंती निर्गंधा इव किंशुका विद्याहीना न शोभंती। वो कुल किस काम का है, वो यौवन किस काम का है, और वो वैभव भी किस काम का है, जहां पर भक्ति ना हो। विद्याहीना न शोभंती, विद्या की विहीन वो जो जीवन है शोभनीय नहीं है। और शास्त्रों ने उदाहरण दिया किंगशुक फूल, किंगशुक जो फूल है वो दिखता बहुत सुंदर है, तो दूर से वो अतीब सुंदर दिखता है, पर जब निकट में जाओ उसमें गंध नहीं है। निर्गंधा इव किंगशुका, गंध विहीन तो फूल किस काम का है। ऐसे ही वो भक्ति भी किस काम का है, जहां पर अहम है। अहम और भक्ति दोनों एक साथ नहीं जा सकते। तो यथा यथा भगवतो भक्त्या परम अयाभिदा नृपाश्चद्यादय सार्ते हरे तत् चिंतया यहु। बड़े बड़े अनुकूल्येन भक्ति, प्रतिकूल्येन मुक्ति, ये जितने असुरों के नाम आया, रावणादि, कंसादि, शिशुपाल आदि जितने असुर बा राजाओं की वर्णन हुआ, ये सब प्रतिकूल में भगवान की पूजा आराधना करते थे, शत्रु भाव से, प्रतिकूल भाव, शत्रु भाव से। पर ठाकुर जी ने क्या किया, उनको भी गति दे दी, वैकुंठ धाम दे दिया। और क्या कहना, जो प्रत्येक दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यदि इन असुरों को ही सदगति मिल सकती है ठाकुर जी की कृपा से, तो हम लोग का क्यों नहीं। इसलिए भगवान के स्वभाव का वर्णन भागवत ने किया, अहो वकीयम स्तनकाल कूटम। बकी वो शब्द है जो हृदय से कुछ और मुंह से कुछ, मुख में राम नाम, बगल में छुरी, हाथी के दांत खाने की और देखाने के लिए, और वो स्थिति है बकी का। हमें बकी नहीं बनना, क्योंकि भगवान चित्त के स्वामी हैं, जिसकी चित्त निर्मल है भगवान वहां ही विराजते हैं। जिसकी चित्त निर्मल है भगवान वहां ही विराजते हैं, और चित्त जिसका गड़बड़ है, हिंसा द्वेष इत्यादि में भरा है, ठाकुर जी उस व्यक्ति से बहुत दूर है। हो सकता है हमारा परिवेश ये देखा है हम भक्त की स्वरूप है, पर केवल गोविंद जानते हैं भक्त की गति कहां पर है। रामानुजाचार्य जी ने इच्छामृतक नाटक में एक श्लोक लिखा भक्तों के लिए, शिरोमुंडितम तुंड मुंडितम चित्तंग न मुंडितम तत् किंग मुंडितम। अरे वो भक्त, तुमने क्या मुंडन किया, सर को मुंडवाया, मूंछ को मुंडवा दिया, अहंकार को निकाला, परंतु हृदय को साफ नहीं किया, तो फिर तुमने क्या मुंडन किया। सुष्टु साधु, साधु वही है जिसकी हृदय ही मंडित हुआ है, अर्थात क्लीन है, है ना। तो इसलिए भक्त की भक्ति में भगवान बंधते हैं। भक्ति प्रबल होना चाहिए। जैसे कि यहां पर एक बात लिखा हुआ है, जे भृंग की कीड़ा, भृंग कीड़ा वो किसी भी कीड़ा को पकड़ लेता है, पकड़ करके क्या करता है ना, वो घर में किसी दीवार के ऊपर उसको रख के उसके ऊपर मिट्टी बनाता, घर बनाता है, और उसके अंदर उसको भर देता है, भर करके उसके मुंह को बंद कर देता है, बंद करके वहां बैठ के ध्यान लगाता है और आवाज निकालता है। उस आवाज को सुन के जिस प्रकार की भी कीड़ा उसके अंदर घुसा हुआ है, वो इस स्वरूप को लेकर के, भृंग कीड़ा का स्वरूप लेकर के वहां से निकलता है। तो भगवान भी यही कहते हैं, भक्त लोग जब भगवान की ध्यान करते हैं, उनकी स्वरूप का वर्णन करते हैं, उनकी चरण की वंदना करते हैं, उनकी रूप माधुरी को दर्शन करते रहते हैं, इसी प्रकार स्मरण करते करते भगवान के अंदर जो सद्गुण है वो भक्त के अंदर भी आ जाता है, और वो भक्त का दर्शन भगवान के दर्शन से भी कभी कभी बड़ा माना जाता है, और जो भक्त कर सकता है वो भगवान भी नहीं कर सकते, इसलिए भक्त को ऊंचे पद पर ठाकुर जी ने बैठाया। देखो दशम स्कंद भागवतम में चाणूर और मुष्टिक की स्थिति, भगवान श्री कृष्ण को चाणूर पकड़ रखा है, मुष्टिक पकड़ रखा है बलराम जी को, अपने हाथ के अंदर भगवान बैठे हैं, छाती से छाती पीटता है, जंघे से जंघा मरड़ता है, मरुड़ते मल्लजुद ऐसे होता है ना, पकड़ के मल्लजुद कर रहे हैं भगवान के साथ, किंतु भगवान को समझने में असमर्थ है। जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम्, लोचनस्य विहीनाभ्यां दर्पण किं करिष्यति। जिस भक्त को अपना ज्ञान ना हो, आत्म साक्षात्कार ना हो, आत्मज्ञान नहीं है, वो शास्त्र का लाभ उठाने में असमर्थ है। शास्त्र में तो बहुत बात लिखी गई है, पर हमारे हृदय में कितना उतरता है, इसके उदाहरण दिया, जैसे अंधा व्यक्ति अगर उसके सामने एक बड़ा सा दर्पण रख दिया जाए, वो दर्पण का मूल्य क्या समझेगा। ऐसे ही जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम्, लोचनस्य विहीनाभ्यां दर्पण किं करिष्यति। और भक्ति जब बढ़ते बढ़ते परिपक्वता को प्राप्त होता है, भक्त की भक्ति, उससे भगवान द्रवित होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, मेरा भक्त कितना सुंदर है। महाराष्ट्र के एक संत हुए, भक्त हुए तुकाराम बाबा। तुकाराम जी एक दिन बीमार पड़े, ऐसी बीमार पड़े, बुखार में पड़े, सज्जा से उठ पाना मुश्किल हुआ। एक भक्त को पत्र देकर के लिखा, जब विट्ठल भगवान के पास जाते हो ये पत्र मेरे ठाकुर जी को दे देना। तो वो भक्त लेकर के विट्ठल भगवान को पत्र दिया, तो तुरंत भगवान वो पत्र को जब पढ़े, जे वो बीमार है आज दर्शन में नहीं आ सकते दर्शन को, तो भगवान उठ के खड़े हो गए और वो चलने लगे। तो रुक्माबाई मतलब रुक्मिणी जी भगवान को बोला, ठाकुर जी इतना जल्दी कहां जा रहे हो। बोले मुझे मेरा भक्त बीमार पड़ा हुआ है, आज वो दर्शन के लिए नहीं आ सकता, मुझे बुलाया तो मैं जाता हूं। बोले नहीं नहीं, देखो कितने भक्त लाइन में खड़े हैं, वो भी तो आपको देखना चाहते हैं, तो आप इतने भक्त को छोड़ के एक भक्त के पास क्यों जाना चाहते हो। एक काम करो, मेरा सलाह है, गरुड़ जी को भेज दो, वो बीमार पड़ा है, गरुड़ की पीठ पर बैठ के वो तुरंत आ जाएगा आपके पास, आप उसके दर्शन करना और वो आपको दर्शन करेगा, आप मत जाओ। तो भगवान ने गरुड़ जी को भेज दिया, और जब गरुड़ पहुंचा, भक्तराज गरुड़ को देख के बोले प्रभु नहीं आए। बोले नहीं, प्रभु ने तो आपकी सेवा में मुझे भेजा, आप मेरे कंधे पर बैठो और मैं आपको ले जाऊंगा तुरंत। बोले नहीं, मैं तो प्रभु को कहा था आने के लिए। देखो और भक्त और भक्ति की आदान और प्रदान, भक्ति में ठाकुर जी कैसे होते हैं। तो ठाकुर जी जब गरुड़ नहीं आए, ठाकुर जी आए, रुक्मिणी जी को लेकर के पधारे और भक्त का दर्शन किए, और वो तुकाराम जी उनकी स्वागत और वंदना किया। तो जहां पर भक्ति से भगवान इतस्तुत हो जाते हैं, जब द्रौपदी ने भी भगवान को पुकारी, भगवान उस समय द्वारका में सत्यभामा के साथ पासा खेल रहे थे, पासा खेलते खेलते बदन उनके विषाद में भर गया। सत्यभामा पूछती है, गोविंद क्या हुआ आपको, इतना हर्षित बदन विषाद में क्यों बदल गया। बोले मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। कष्ट में है तो जाओ उसकी रक्षा करो। बोले द्रौपदी अभी कौरवों के बीच में है और मुझे पुकार रही है। और महाभारत की दो श्लोक द्रौपदी के आर्त श्लोक है। ऐसे अगर भक्त पुकारे भगवान आएंगे, पर हृदय बिल्कुल साफ होना चाहिए। हृदय में अगर किंतु मात्र ही विषय की आशा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इत्यादि से निवृत्त नहीं है भक्त, गोविंद तक वो पुकार नहीं पहुंच सकते। द्रौपदी भरी सभा में पुकारी, हे कृष्ण द्वारकावासिन, गोपी कृष्ण जन प्रिय कौरवै परिभूतांगम किं नो जानासि केशव। हे नाथ हे रमानाथ क्वासि यादव नंदन कौरवार्णव मंगमग्न मंगमुद्धारस्य जनार्दन। हे कृष्ण द्वारकावासिन गोपी कृष्ण जनप्रिय, हे द्वारका में उस समय भगवान द्वारका में राजा बने हुए थे, हे द्वारका के निवासी भगवान श्री कृष्ण, क्या आप ये नहीं जानते गोपी गोपियों को आनंद प्रदान करने वाले आप ही तो है, क्या आप ये नहीं जानते जे कौरवों के बीच मैं अभी खड़े हूं, चारों तरफ से ये कौरव मुझे घेर रखे हैं, किंतु द्रौपदी अभी भी यही सोच रही थी जे मेरे बल से मैं दुशासन को हटा सकती हूं। वो भगवान से पूर्ण रूप ही न समर्पित नहीं थी, पर जब द्रौपदी को ये पता चला मेरा ताकत अभी दुशासन के सामने कुछ भी नहीं है, अब मेरे लज्जा को मैं संवार नहीं सकती, तब आंखें बंद कर दी और ऊर्ध्व भाव में दोनों हाथ को उठा दिए ऊपर को, फिर बोली, हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन कौरवार्णव मग्न मंग उद्धारस्य जनार्दन। हे रमापति कमलापति कृपया क्या आप ये नहीं जानते, अभी कौरव रूपी अर्णव कहते हैं समुद्र को, मैं डूब रही हूं अर्थात नग्न हो रही हूं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है ठाकुर जी, मैं क्या करूं। समर्पण भाव पूर्ण रूपेण हाथ को ऊपर उठा दी, आंखें को बंद कर दी, तब भगवान को वस्त्र रूप लेना पड़ा। जब पूर्ण रूपेण समर्पित हुई ऐसे विदुर जी ने भी हुई, विदुर भगवान की कथा सुनो, विदुर भगवान आए, भगवान दुर्योधन की ओर जा रहे थे, रास्ता में विदुर बोले मेरे घर आओ, और भगवान विदुर जी की कुटिया पर आ गए और विदुर भावपूर्ण में क्या स्तुति किया। विदुर भगवान विदुर जी भगवान को देख करके चेतना भ्रष्ट हो गए, विदुरो भ्रष्ट चेतन चेतना भ्रष्ट हो गए, और विदुर जी ने कहा जे ठाकुर जी किमाल सनंगते गरुड़ा ಶಿವನಾಯ ಕಿಂಭೂಷಣ ಕೌಸ್ತುಭ ಭೂಷಣಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಲತ್ರಾಯ ಕಿಮಸ್ತಿ ದೇಯಂ ಬಾಗೀಶಕಾಂತೆ ವಚನಂ ಕಿಮಸ್ತಿ. ಹೇ ಠಾಕುರ್ ಜಿ, ಚತುರ್ದಶ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕಾ ನಾಯಕ ಆಪ್ ಹೇ, ಜೋ ಗರುಡ್ ಕಿ ಪೃಷ್ಠದೇಶ ಮೇ ಬೈಠ ಕರ್ಕೆ ಚತುರ್ದಶ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಮಣ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಉಸ್ಸೆ ಬಡ ಕರ್ಕೆ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಕೋಯಿ ಆಸನ್ ನಹೀಂ ಹೇ. ಠಾಕುರ್ ಜಿ, ಆಪ್ಕೋ ಕಿಸ್ ಆಸನ್ ಪರ ಬೈಠಾ ಹೂ? ಕಿಮಾಸನಂಗ್ ತೇ ಗರುಡಾಸನಾಯ ಕಿಂಗ್ ಭೂಷಣಂ ಕೌಸ್ತುಭ ಭೂಷಣಾಯ. ನೈ ತೋ ಕುಚ್ ಆಭೂಷಣ ದೇಕರ್ಕೆ ಆಪ್ಕೋ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೇ ಕರ್ತಾ, ಜಿನ್ಕೆ ಗಲೆ ಪರ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿ ವಿದ್ಯಮಾನ ಹೇ. ಯ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿ ಬಡಾ ಭಕ್ತ ಹೇ. ತಪಸ್ಯಾ ಭಗವಾನ್ಕೋ ಪುಕಾರಾ, ಐಸಿ ಪುಕಾರಾ, ವೈಕುಂಠ ಇತಸ್ತತ ಹೋನೆ ಲಗಾ. ಭಗವಾನ್ ಪಧಾರೆ, ಬಲೆ ಭೂಖ ಕೆ ಕಾರಣ, ಕ್ಷುದಾ ಕೆ ಕಾರಣ ಆಪ್ಕಾ ನಾಮ ಜಪನಾ ಮೇ ನಹೀಂ ಕರ್ ಪಾತಾ ಉಸ್ ಸಮಯ ಮುಝೆ ಆಪ್ಕಾ ನಾಮ ಸ್ಮರಣ ನಹೀಂ ಹೋತಾ ಗೋವಿಂದ, ಕ್ಯಾ ಕರು? ಠಾಕುರ್ ಜಿ ಬೋಲೆ, ಕ್ಯಾ ಚಾಹಿಯೇ? ಬೋಲೆ, ಪೇಟ್ ಕೋ ಹೀ ಕಾಟ್ ದೋ, ತಾಕಿ ಕ್ಷುದಾ ನಾ ರಹೆ, ಫಿರ್ ಮುಝೆ ತಕ್ಲೀಫ್ ನಾ ಆಯೆ. ಭಗವಾನ್ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಚಲಾ ದಿಯೆ, ಪೇಟ್ ಕಟ್ ಗಯಾ, ಫಿರ್ ಭಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣೇತಿ ಯೋಮಂಗ ಭಜ್ಯತಿ ನಿತ್ಯ ಸಹ ಜಳಂ ಭಿತ್ವ ಯಥಾ ಪದ್ಮ ನೀರಯತ್ಯಾರಯಾಮ್ಯಹಂ. ಭಗವಾನ್ ವಚನ್ ದೇತೆ ಹೇ, ಜೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಔರ್ ಕೃಷ್ಣೇತಿ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೇರೆ ನಾಮ ಕಾ ಜಪ ಕರ್ತಾ ರಹೆ, ಜಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಮಲ್ ಕೆ ಫುಲ್ ಪಂಕ ಸಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋಕರ್ ಪಾನಿ ಕೋ ಅನಾಯಾಸ ಭೇದ ಕರ್ಕೆ ಖಿಲ್ ಜಾತಾ ಹೇ, ಐಸಹಿ ನರ್ಕ ಕೆ ಅಂದರ್ ಡುಬಾ ಹುವಾ ವೋ ಭಕ್ತ ಕೋ ಮೇ ಹಾಥ್ ಸೆ ಖೀಚ ಲೇತಾ ಹೂ, ಐಸಹಿ ಉಠಾ ದೇತಾ ಹೂ. ಯೇ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ವಾಣಿ ಹೇ, ತೋ ಇಸ್ಕೆ ಉಪರ್ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋ ಕರ್ನಾ ಪಡೆಗಾ. ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನಹೀಂ ಹೇ ತೋ ಫಿರ್ ಈ ಫಲವತ್ ಕೈಸೆ ಹೋಗಾ? ಠಾಕುರ್ ಜಿ ಕಿ ಕೃಪಾ ಕೈಸೆ ಬರ್ಸೆಗಿ? इसलिए प्रत्येक भक्त को चाहिए, विदुर जैसा, द्रौपदी जैसे और तुकाराम बाबा जैसा भक्ति को अपनाएं, तब भगवान भी तस्तत होते हैं, भगवान भी हिलते हैं, भगवान की आंखें भी ढूंढता है कहां है वो भक्त मेरा. तो जयानंद प्रभु भी प्रभुपाद जी के अनन्य भक्त में एक थे. प्रभुपाद जी क्लास में बैठ करके ढूंढते रहे, जयानंद नहीं दिखे. प्रभुपाद जी बोलते, हुए रे जयानंद, सेवा ऐसी करो ठाकुर जी की आंखें भी घूम जाए, सेवा ऐसी करो, ऐसी पुकारो ठाकुर जी को हृदय से. ठाकुर जी भी इतस्तत हुए. उडुपी कृष्ण की स्टोरी तो आप सभी को पता होगा. उडुपी कृष्ण वो जो भक्त था, अस्पृश्य था, छोटे जात का था, तो ब्राह्मण लोग पुजारी लोग उसको अंदर लेने मना किया, तुम अंदर नहीं आ सकते, ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर सकते. बहुत प्रयास किया. एक दिन तो उसकी हृदय में इतना उतावलपना आया, बोला आज ठाकुर जी को देख के ही रहूंगा, और वो मंदिर के अंदर घुसना चाहा, फिर पुजारी वर्ग उसको निकाल दिए, बोले तुम नहीं आ सकते, तुम ठाकुर जी को नहीं देख सकते. तुकाराम बाबा की भी ऐसी हुआ. उनकी जो अभंग लिखे गए थे, तुकाराम जी लिखे थे, ब्राह्मण समाज ने बैठ के निर्णय दे दिया, तुम अधिकारी नहीं हो इसको लिखने के लिए, ये सब ब्राह्मण लोग लिखेंगे, अधिकारी नहीं हो. और निष्कर्ष क्या दिया, ये ग्रंथ को तुम इंद्रायणी नदी में डुब दो, और उन्होंने दे दिया, क्योंकि बड़े व्यक्ति ने कहा, किंतु बहुत रोए. और जब उस पुस्तक को उन्होंने डुब दिया पानी में, इंद्रायणी नदी में, और उसी के तट पर बैठ करके वो भगवान के ध्यान में बैठे थे. एक दिन बीता, दो दिन बीता, ऐसे 13 दिन बीता, अन्न जल लिए बिना दुख में हृदय कांप रहा था। जे सर्वस्व जो मैं आपका गुणगान किया, ये लोगों ने पानी में डुबो दिया। और जब चतुर्दश दिन, 14 दिन के बाद, 14 दिन में वहां पर वो पुस्तक को लेकर के स्वयं गोपाल जी और दानी नदी प्रकट हो गई और बोले, भक्त ये लो, देखो उस भक्त में कितना शक्ति हुआ होगा। और जो भक्त के साथ, चाहे वो कितना बुरा है, जो भक्त की सेवा में लगा हुआ है, आदित्य पुराण में भगवान कहते हैं, मद भक्तो बल्लभस्य समे वल्लभ तंग मम मत परो वल्लभ नास्ति सत्यम सत्यम वदाम्य हम। मैं सत्य बोल रहा हूं, भगवान बोलते हैं, मैं सत्य बोल रहा हूं, जितना प्रसन्न मैं होता हूं, मेरे सेवा जो करता है, मेरे भक्त की सेवा में जो लगा हुआ है, मैं उससे कई गुण अतीब प्रसन्न होता हूं। जीजाबाई पत्नी थी भक्त तुकाराम जी के। तुकाराम जी पहाड़ के ऊपर तपस्या कर रहे थे और नित्य प्रति वो भोजन करके लेके जाती थी उनको खिलाने के लिए। भक्त बैठा हुआ है और उसकी सेवा में लगी हुई पत्नी जीजाबाई, एक दिन जाते जाते वो पहाड़ों के ऊपर चलते चलते एक कांटा चुभ गया जीजाबाई के पैर में। और जीजाबाई चित्कार कर उठी, भोजन को नीचे रख करके चित्कार कर रही थी। भगवान आ गए गोपाल के रूप में, बोले क्या हुआ? बोले बहुत बड़ा कांटा चुभ गया। बोले बैठो। तो कांटे को ठाकुर जी निकाल दिए, भंडारा पहाड़ पर्वत में, भंडारा रूपी पर्वत का नाम था भंडारा, वो पहाड़ में ठाकुर जी कांटा को निकाले। क्यों? बोलने में तो बड़ी कर्कश थी, हमेशा वो विठल जी की, विठल भगवान के कटाक्ष करते थे, सारा दिन विठल विठल करते रहते हो, परंतु भक्त को बिना खिलाए वो कभी खाती नहीं थी, अपनी पति को खिला करके खाती थी। और आज जाते जाते कांटा चुभ गया, खून बह रहा है और भगवान गोपाल के रूप में आके कांटा निकलता है। और जब उसको पता चला ये भगवान है, गोपाल गोपाल है, तब उनको ईट भी फेंकती है, पर भगवान उसको दर्शन दिए। क्यों? क्योंकि भक्त की सेवा जो करता है भगवान अतीव प्रसन्न होते हैं। इसलिए भक्त, शुद्ध भक्त, जो भक्ति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, इसलिए भगवान विष्णु व कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। और जब भक्त स्मरण में लगता है उसमें तीन बातों की निवृत्ति होती है, स्मर प्लस रण प्लस मरण इक्वल टू स्मरण, ये समास शब्द है संस्कृत का। तो स्मर कहते हैं काम को, मदन मनमत्थ मार प्रद्युम्न मिन केतन कंदर्प दर्प को अनंग काम पंच सर स्मर। तो स्मर भी काम भी, प्रभुपाद कहते हैं, इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू सर्व मदन मोहन, मदन मोहन भगवान के नाम है, देन यू विल बी मदन दहन। यदि मदन मोहन की सेवा में रहोगे तो काम तुमको ग्रास नहीं कर सकता, अदरवाइज काम रूपी अग्नि में तुम जल जाओगे। विक्रीडितम ब्रजवधु भूरिदम च विष्णु श्रद्धानितनु शृणुयाद वर्णयेद यः भक्तिम परांग भगवती प्रतिलभ्य कामः। ब्रजांगनाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जो अनन्य लीला है, जब भक्त आतुरता पूर्वक उसको श्रवण करता है तब काम शांत हो जाता है, प्रतिलब्ध काम। इसलिए शुद्ध भक्त भक्ति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर चिंतन करते रहते हैं। ये चिंतन व स्मरण करने से काम का भी निवृत्ति होता है और रण, रण कहते झगड़ा को, द्वंद को, ये घोर कली ने, हाँ ये घोर कली युग, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलाह वस्मिन युगे जन मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य युपद्युत। ये कली के कुछ लक्षण है। और कली के लक्षण क्या है? धर्म संकोचित तपी विरहित क्षौणी मंद फला नृपश्य कुटिला ब्राह्मण ब्रह्म त्यागी कूल स्त्री भ्रष्टा। ये भी कली के लक्षण है। धर्मपरायण व्यक्ति बड़े संकोच में रहा करता है। धर्म संकोचित तपी, तप करने वाले व्यक्ति का मन तप में नहीं लगता, तप को छोड़ के और कुछ करता है। तपी विरहित क्षौणी मंद फला, जो देश को बचाने वाला व्यक्ति है, क्षौणी सैनिक लोग, वो देश को बचाए बगैर देश के लीडर को गोली कर देते हैं। अमेरिका से लेकर इंडिया तक देखो कितने लोग स्वयं सिक्योरिटी चला दिया गोली। ये श्लोक तो लिखी है बहुत सालों पहले, पर आज भी ये सत्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत उत्तर, हम ब्राह्मण लोग जब संकल्प पाठ करते, महासंकल्प में आता है उत्तराखंडे भारतवर्षे उत्तराखंडे, उत्तर जो ऋषि मुनियों ने आज भी आंसर दे दिया है इन ग्रंथों में, आज तक कोई व्यक्ति उसको खंड कर पाया है क्या? अखंड उत्तराखंड, उत्तर अखंड इक्वल टू उत्तराखंड, कोई व्यक्ति खंड नहीं किया, पेन नहीं चला पाया, क्योंकि पूर्ण सत्य है। पूर्ण सत्य, सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्यम सत्य सत्यम निहितम च सत्य 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 मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। समस्त देवता भगवान को स्तुति करते हैं, वो पूर्ण सत्य की प्रतीक है भगवान श्री कृष्ण हमारे। इसलिए भक्ति शुद्ध होना चाहिए। इंद्रियां शुद्ध जब होती है तब मन भी शुद्ध होता है। मन शुद्ध हो जाए फिर अहंकार की जगह कहाँ है। पर जब एक भक्त को मिले और निकट में जाए और थोड़ा हरे कृष्ण ना बोले, मैं तो समझता हूं इतना अहंकार साथ ठाकुर जी भी नहीं सह सकते। इसलिए निकट आ जाए तो कम से कम हाथ जुड़ के हरे कृष्ण बोल दो। अगर आप जब भी करते हो फिर भी हरे कृष्ण भी ना बोले, एक संकेत के रूप में प्रणाम कर दो, फिर भी गोविंद समझेंगे। किंतु इतना निकट आने के बाद क्या आप देखें, आप ठीक देखते हो फिर भी आप निकल जाते हो, वो एक प्रकार की अपराध है। इतना घमंड में भक्त को नहीं चलना चाहिए। हाँ, इसके प्रति ध्यान दो, नहीं तो भक्ति कहीं डगमगाएगा। भक्ति की पूर्ण स्वाद हम प्राप्त करने में असमर्थ है। ये जन्म में नहीं, जन्म जन्म बीत जाएगा। बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाई कृष्ण पदे प्रेम धन। न उत्पादयते यदि रतिम श्रम वही केवलम। एक जन्म क्यों, सौ जन्म भी बिताओ फिर भी हम उसी जगह पर है। उस दिन मैंने कुकिंग की बात कही थी, प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आग में तेज नहीं है कुकिंग नहीं हो सकता, आपको तेज बढ़ाना पड़ेगा। भक्ति वर्धन के लिए भक्तों की संग करना पड़ेगा, उत्तम भक्त की चरित्र देना पड़ेगा। आज हमारे प्रभु, मैं अनेक दिन से मेरे पैर में मैं कभी नाचा नहीं था, पर आज हमारे प्रभु इतने तन्मयता से हो करके, प्रभु जी के नाम में भूल जाता हूं, बहुत ब्रह्मचारी इतनी सुंदर से कीर्तन किया, मेरे पैर रुके नहीं, मैं उन्मत्त हो उठा। यही मंदिर था जब 300 भक्तों के साथ हम इतने नृत्य करते थे, दो दो घंटा वो नृत्य देख देख करके भक्त, उस समय 95 न्यू भक्त थे। देवकी नंदन प्रभु फिर बाद में टुक ओवर किए, फिर मैं किसी और सेवा में गया, केवल नृत्य देख देख करके। सबरे ढूंढ हमारा प्रभु जी सामने उस समय भी ये भी जन किए हुए थे, बिल्कुल जय तीर्थ प्रभु लंबे थे व्हाइट में, हाथ को लंबा हाथ था उनका, एक काला चश्मा पहन करके ये खड़े थे। तमाल कृष्ण महाराज, गिरिराज स्वामी, लोकनाथ स्वामी, श्रीधर स्वामी, भर जाता था मंदिर चारों तरफ से, और ब्रह्मचारी। उन दिनों में ऐसा होता था, मैंने आज अगर मुझे कोई पूछे, ये भक्ति तो था पर वो पूर्ण भक्ति नहीं था, रियलाइजेशन में कुछ कमी थी, खाली निंदा करना, जब जब मौका मिले दूसरे की निंदा कर देना श्लोक पढ़ के, माया माया माया, ब्रह्मचर्य ठीक बनो ना, डोंट चैलेंज दैट वे, बी ए हरिदास ठाकुर, बी ए जेंटल, बी ए नाइस एंड बी ए स्वीट डिवोटी ऑफ लॉर्ड। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। प्रसाद का समय हो गया है, राइट? चलो हरि बोल।